तुम खलु निश्चय ही औषधि जड़ी बूटियां तथा अन्नों के बीजानी बीज प्राक पूर्व काल में सृष्टानी उत्पन्न स्वयं भुवा ब्रह्मा द्वारा न नहीं मुंचसी देती हो आत्मरुद्धानी अपने भीतर छिपाए हुए माम मुझको अवज्ञाय आज्ञा का पालन न करके मंदधी अल्पबुद्धि वाली। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, तुमने इस तरह है अपनी बुद्धि गंवा दी है कि मेरी आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियां तथा अन्नों की बीज नहीं दे रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड में लोकों की सृष्टि करते समय श्री ब्रह्मा ने विविध अन्नों जड़ी बूटियों पौधों तथा वृक्षों के बीज भी उत्पन्न किए। जब बादल प्रचुर जल की वर्षा करते हैं तो बीज उगकर फल अन्न शाक उत्पन्न करते हैं। पृथु महाराज अपना उदाहरण देते हुए यह संकेत देते हैं कि जब भी अन्नाभाव हो तो सरकार के अध्यक्ष को चाहिए कि वह देखे कि उत्पादन क्यों रुका हुआ है और उसे ठीक करने के लिए कदम उठाए। अनुवाद को दोहराइएगा। कृष्णा महाराज भर्त्सना कर रहे हैं पृथ्वी माता की, डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने अपनी बुद्धि खो दी है क्योंकि मेरे आज्ञा का पालन तुमने नहीं किया। सृष्टि के रचना के समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियों के लिए सारे बीज तैयार किए थे और जहां तक पृथ्वी का सवाल है, पृथ्वी के भीतर ब्रह्मा जी ने अलग अलग अन्नों के पेड़ पौधों के वृक्षों के जड़ी बूटियों के बीज छुपा के रखे थे और मनुष्य जाति का कर्तव्य ये था कि वो यज्ञ करके जो छिपे हुए बीज हैं उनको प्रकट कराए ताकि वो उगकर सारे प्राणियों के पालन पोषण के लिए अन्न फल फूल इत्यादि प्रदान करे। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं प्राणियों को चाहिए अन्न जीने के लिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि, भूतानि मतलब भूत मतलब केवल जो भटकने वाले भूत नहीं, सूक्ष्म शरीर वाले। संस्कृत में भूत का यह भी मतलब होता है सारे प्राणी। जो विविध प्रकार के प्राणी हैं उनको भी भूत कहा गया है। जिस तरह से शिव जी को भूतनाथ बताया जाता है तो वो भूतों के नाथ तो है ही, उनको आश्रय तो देते हैं, साथ साथ वो सारे प्राणियों के नाथ भी हैं क्योंकि वो परम वैष्णव हैं और परम वैष्णव जगत गुरु होते हैं। इसलिए भूत शब्द का मतलब है कि सारे प्राणी। अन्नात् भवन्ति भूतानि, तो सारे प्राणी अन्न के ऊपर निर्भर हैं अपने पालन पोषण के लिए। और अन्न कहां से आते हैं? पर्जन्याद अन्न संभव, संभूताम संभव मतलब जहां से उत्पन्न होता है। तो अन्न कहां से आते हैं? अन्न पर्जन्यो, पर्जन्य मतलब वर्षा बारिश। तो जब बारिश होती है तो उस समय अन्न और अन्न के बीज जो छुपे हुए हैं मिट्टी के अंदर, वो बड़े होकर पौधे बन जाते हैं, अनाज बन जाता है इत्यादि। और वर्षा कहां से होती है, वर्षा होने का कारण क्या है, ये आजकल के समाज में लोगों को नहीं मालूम। यज्ञ कर्मात् यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्य या वर्षा यज्ञ करने से होता है। और यज्ञ क्या है, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः, यज्ञ अपने निहित कार्य करने से उत्पन्न होता है। जब हरेक व्यक्ति समाज में अपने अपने निहित कार्य करता है, जैसे कि शास्त्रों में बताया हुआ है, हर एक व्यक्ति के लिए कर्तव्य होते हैं, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, चाहे कोई नेता हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति का यह संसार में निहित कर्म रहता है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी शास्त्रों के अनुसार। इसको हमें मन घड़ित ढंग से नहीं समझना चाहिए कि मेरा निहित कार्य क्या है। कोई व्यापारी सोच सकता है मेरा निहित कार्य है कि बहुत ज्यादा पैसे कमाऊं, कमाते रहूं, क्योंकि आखिर में मैं व्यापारी हूं, तो दूसरों का गले काट के भी मुझे अगर पैसा कमाना पड़े तो वो करूं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह से धारणा हो सकती है कि मेरा निहित कार्य क्या है। चोर समझेगा मेरा निहित कार्य चोरी करना है। तो निहित कार्य, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, ये शास्त्रों के आधार पर हमें समझना चाहिए। भगवान ने हमारे लिए क्या कर्म बनाए हैं, क्या कार्य बताए हैं, अपने अपने स्थिति के अनुसार। जो गृहस्थी है उसके कार्य एक प्रकार के होते हैं, जो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी हैं उनके कार्य अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन फिर भी सारे मनुष्य जाति का जो मूल कार्य है वो एक होता है। चाहे वो कोई ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कोई व्यापारी हो, कोई अध्यापक हो, थोड़े कार्य सबके अलग अलग रहते हैं भौतिक परिस्थिति के हिसाब से, और थोड़े कार्य ऐसे होते हैं जो कि सबके लिए एक समान है, क्योंकि ये कार्य आत्मा के प्रति संबंधित हैं और ये कार्य सभी को करने चाहिए, क्योंकि सभी लोग आत्मा हैं, भले वो अध्यापक हो, व्यापारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, सभी आत्मा हैं। इसलिए आत्मा के स्तर में जो कार्य होते हैं वो सभी को बराबर से करने चाहिए। जैसे कि आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा करना, शरीर का कार्य है अपना देखभाल करना, शरीर से संबंधित जो भी कर्तव्य है उनको संभालना। इसी तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण दो प्रकार के स्वधर्मों की चर्चा करते हैं। धर्म, धर्म मतलब क्या है, धर्म ये नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ये नहीं। मूल रूप से धर्म शब्द की व्याख्या ये है कि जो गुण किसी वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता वो उसका धर्म है। तो ख्याल से सुनिएगा परिभाषा, धर्म किसी वस्तु का क्या है, वो गुण जो कि उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। और जैसे कि अग्नि का धर्म क्या है, उष्णता, प्रकाश। शक्कर का धर्म क्या है, मिठास। तो उसी तरह से जीव का स्वभाव या जीव का धर्म क्या है, वो क्या चीज है जो कि जीव से अलग नहीं किया जा सकता, वो है सेवा करने की प्रवृत्ति। हर एक जीव की सेवा करने की प्रवृत्ति होती है, हर एक जीव सेवा करना चाहता है, लेकिन किसको, किसकी सेवा करता है? जब अज्ञान में होता है तो सारे संसार की सेवा करता है, अपनी इंद्रियों की सेवा करता है, लेकिन वास्तव में जिनकी सेवा करनी चाहिए उनकी सेवा नहीं करता है। वास्तव में जीव को चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, क्योंकि ये जीव का स्वरूप है, उसका स्वभाव है। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप है कि वो श्री कृष्ण का नित्य दास है। तो ये आत्मा के स्तर पे उसका स्वधर्म है, स्व मतलब मैं। लेकिन जब तक हम ये नहीं समझते कि मैं आत्मा हूं, हम अपने आप को शरीर समझेंगे। तो हमारा स्वधर्म हम केवल शरीर के संबंध से जोड़ देंगे। हम सोचेंगे कि मेरा स्वधर्म है पैसा कमाना, परिवार का देखभाल करना, समाज में लोगों को नौकरी देना वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम समझेंगे कि ये जो स्व है, स्व मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब एक नया प्रकार का स्वधर्म उत्पन्न हो जाएगा। और ये नया प्रकार का स्वधर्म वास्तव में हमारा असली स्वधर्म है, क्योंकि हम ये 24 घंटे इस आत्मा के स्वधर्म को पालन नहीं कर सकते, इसलिए हमें शरीर के स्तर का स्वधर्म भी स्वीकार करना पड़ता है। इस बात की और पुष्टि करें, विस्तारित रूप से इसकी व्याख्या करें। जैसे आत्मा का स्वधर्म भगवान की सेवा करना है, और कलयुग में मूल सेवा भगवान के नाम के जप और कीर्तन से होता है। तो ये हमारा मूल स्वधर्म है जो सबके लिए समान है, चाहे वो नीच जाति का हो, ऊंच जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, स्त्री हो, जो भी क्यों न हो, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना। तो ये हमारा मूल आध्यात्मिक धर्म है, हमारा स्वधर्म आत्मा के स्तर पे। लेकिन क्या सभी लोग ऐसा कर सकते हैं? जिनको ये ज्ञान है भी, क्या सभी लोग 24 घंटे बैठकर भगवान का नाम ले सकते हैं? नहीं। हम अनुभव करते हैं कि 2 घंटे बैठकर 16 माला करना भी कितना कठिन होता है, मन कितना भटकता है। हम एक जगह बैठकर नहीं कर सकते, हमें इधर उधर जाना पड़ता है, दूसरे काम करने पड़ते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि हम आत्मा के स्वधर्म को पूरी तरह से 24 घंटे नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने हमारे लिए दूसरा स्वधर्म भी दिया है, वो शरीर का स्वधर्म, जिससे कि शरीर के लिए हम कुछ काम करें, 3 गुणों के प्रभाव से हम कार्य करें। जो सत्व गुण में स्थित है वो उस प्रकार का कार्य करेगा, रजगुण में जो स्थित है उस प्रकार का कार्य करेगा इत्यादि। और ऐसे करते हुए वो अपने शरीर और मन का देखभाल करे, जिससे कि फिर वो अच्छे तरह से आत्मा का स्वधर्म संभाल पाएगा। तो इस तरह से जीव या सब व्यक्ति को चाहिए कि वो दोनों स्वधर्म को अच्छी तरह से संतुलित अवस्था में रखते हुए अपने जीवन यापन करे। शरीर का स्वधर्म भी चाहिए, आत्मा का स्वधर्म भी चाहिए। अगर कोई कहेगा मैं तो केवल हरि नाम जप करूंगा, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, तपस्या करूंगा, तो जल्दी मर जाएगा, जप नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति जप नहीं कर सकता है, कर सकता है नहीं। तो अगर शरीर को नहीं बनाए रखेंगे तो जप क्या करेंगे? तो शरीर का देखभाल करना है। दूसरी ओर कोई ऐसा आदमी कहेगा मैं केवल शरीर का देखभाल करूंगा, अच्छी तरह से खिलाऊंगा, कसरत करूंगा, बॉडी बनाऊंगा, समाज में यश कमाऊंगा, लेकिन आत्मा का देखभाल नहीं करूंगा, तो फिर वो मर जाएगा और उसके सारे जो परिश्रम है व्यर्थ है। तो दोनों स्वधर्म साथ में चलने चाहिए। तो जब हम इस तरह से अपने दोनों स्वधर्मों को का पालन करते हैं, इसको यज्ञ कहते हैं। तो भगवान जो बोल रहे हैं, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो ये कर्म मतलब कौन से कर्म होते हैं? हमारे निहित कार्य, हमारे दोनों स्वधर्म। जब हमारे दोनों तरह के स्वधर्म हम करते हैं, तब भगवान संतुष्ट होते हैं। भगवान की संतुष्टि, इसी को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं गीता में कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो उसको यज्ञ कहते हैं, और ऐसे यज्ञ से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जब हम स्वार्थ के लिए, अपने निजी कोई फायदे के लिए हम कार्य करते हैं, तो वो कार्य हमारे जन्म मृत्यु के चक्र के भीतर बंधन का कारण बन जाता है। वही कार्य, एक कार्य हम अपने लिए कर रहे हैं और वही कार्य भगवान के लिए करेंगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि बाहरी दृष्टि से देखते हुए दोनों एक तरह के लगते हैं। जैसे अर्जुन और दुर्योधन दोनों कुरुक्षेत्र के युद्ध में, रणभूमि में युद्ध कर रहे थे, दोनों तीर बाण चला रहे थे, लेकिन अर्जुन की एक गति हुई, दुर्योधन की दूसरी गति हुई। क्यों? क्योंकि अर्जुन कृष्ण भगवान के आदेश के अनुसार कार्य कर रहे थे और दुर्योधन कृष्ण भगवान के आदेश का उल्लंघन करके अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे थे। बाहरी दृष्टि से दोनों लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जमीन आसमान का फर्क था अर्जुन के युद्ध करने में और दुर्योधन के युद्ध करने में। तो इस तरह से ये यज्ञ है। तो जब हम यज्ञ करते हैं इस तरह से, केवल स्वाहा करके यज्ञ करना इतना काफी नहीं है। यज्ञ मतलब अपने जीवन को ही एक यज्ञ बनाना, अपने जीवन के हर एक घड़ी को भगवान के प्रति समर्पित करना, अपने हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित करना, तन मन धन को समर्पित करना। हाँ, धन को भी, ऐसा नहीं कि केवल तन मन को। कई लोग बोलते हैं आप हाँ भगवान की सेवा हम यहां तक रखेंगे, अपने कुटुंब को और अपने धन को छूए मत, बाकी सब धर्म हम करेंगे। तो तन मन धन कुटुंब सब कुछ, मानस देह गेह जो किछु मोर आर पुलंतुआ पदे नंद किशोर। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अपने भजन में, हे नंद किशोर श्री कृष्ण भगवान, जो भी कुछ मेरा है, मानस देह गेह, मेरा मन, मेरा देह, मेरा घर, सब कुछ मैं आपके हवाले कर देता हूं। तो ऐसी भावना से जो जीता है, उसका हर एक कार्य, उसका हर एक क्षण एक यज्ञ कहलाता है, क्योंकि ऐसे कार्यों से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति जब रहते हैं संसार में, तो फिर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो सारी देवी देवताएं प्रसन्न होते हैं, और इसलिए सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो फिर पृथ्वी माता छिपे हुए बीजों को रोक के रखती है। जब कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी, जबकि श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़कर जा रहे थे, तो सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की कुंती जी ने श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में, सभी को पढ़ना चाहिए। कुंती महारानी की प्रार्थना बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। प्रभुपाद जी बताते थे कि हमारी सारा दर्शन जो है, सारे वैदिक दर्शन इन प्रार्थनाओं में छुपा हुआ है, और प्रभुपाद ने इसके ऊपर ग्रंथ भी लिखा था, कुंती महारानी की शिक्षाएं। तो अगर यहां उपलब्ध है तो कृपा करके सब देख लीजिए और पढ़िए। और इस प्रार्थना के भीतर कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से कह रही है, नियम शोभिष्यते तत्र यथे दानिम गदाधर त्वत् पदैर अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षणैः। वो कहती है कि हे कृष्ण, जब तक आप यहां हैं, तो यहां पर आपके चरण कमलों का जो स्पर्श होता है इस भूमि से, तो आपके पद चिन्हों की वजह से सब कुछ यहां शुभ हो जाता है, सब कुछ बहुत सुंदर हो जाता है। अंकिता भाती आपके सुंदर सुंदर पद कमलों से, विलक्षण तो हम देखते हैं कि कितना सब सुंदर हो गया है यहां पर, लेकिन आप जब चले जाओगे तो यहां का सौंदर्य चला जाएगा, ये पृथ्वी माता भी इतनी सुंदर नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप जब तक यहां पर उपस्थित हैं, तब तक यहां सारी प्रकृति बिल्कुल प्रफुल्लित लगेगी, कितने शांत और कितना सब अच्छा लगेगा आपकी उपस्थिति की वजह से। और आगे चल के कुंती महारानी बताती है, इमे जनापदः स्वृद्धा सुपक्वौषधि वीरुतः वनात्रि नत्युदन्वन्तो हि एघन विलक्षणैः। वो कहती है कि जब आपकी करुणा की दृष्टि होती है, तो तब सब कुछ प्रचुर मात्रा में हमें उपलब्ध हो जाता है। क्या उदाहरण देती है कुंती महारानी? वो कहती है कि सुंदर सुंदर वन हो जाते हैं, और फिर अद्री अर्थात पर्वत, ये पर्वत भी बहुत अच्छी तरह से उनके अंदर जो धातु है वो स्वयं प्रकट कर देते हैं। नदी भी अच्छी तरह से बहने लगते हैं, उनमें पानी होती है, सूखते नहीं है, गर्मियों के समय भी कृषि के लिए पानी देते हैं पर्याप्त मात्रा में। और फिर जो खेत हैं, खेत जो है बहुत अच्छी तरह से उपजाऊ बन जाते हैं, उनकी उर्वरा शक्ति भी बहुत अच्छी हो जाती है, किसी चीज की कमी नहीं होती है। और जो अन्न है, वनस्पति है, फल फूल है, वो भी अच्छी तरह से उगते हैं सब जगह। सब जगह खेत हरे भरे लगते हैं, प्रकृति बहुत सुंदर लगती है। ही ए धनते तव वीक्षित ही, और ये केवल इसलिए हो रहा है कृष्ण, क्योंकि आपकी दृष्टि, आपकी नजर इस पर लगी हुई है। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण की करुणा की दृष्टि पड़ती है प्रकृति के ऊपर, तो सब कुछ अच्छी तरह से प्रकृति माता, प्रकृति या पृथ्वी माता प्रदान करती है सारे प्राणियों के लिए। लेकिन जब हम भगवान को संतुष्ट नहीं करते हैं और भगवान दुर्लक्ष करते हैं या इस ओर देखते नहीं हैं, तो सब कुछ सूख जाता है। और इस तरह से प्रकृति माता भी अपने अंदर सब छुपा के रख देती है। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है। लोग अभी प्रकृति के अभाव का या प्रकृति में जो भी कष्ट है या जो भी कमियां हैं, उनको पूरे करने के लिए विज्ञान का प्रयोग करते हैं और सोचते हैं कि विज्ञान से के बल पर, हमारे संशोधन के बल पर, हमारे तकनीकी विज्ञान के बल पर हम ऐसे प्रतिकार करेंगे प्रकृति के जो कष्ट हमें देती है उसका, कि हम सारे चीजों को ठीक ठाक कर देंगे। अगर वर्षा की कमी है कोई बात नहीं, हमारे तकनीकी ज्ञान से बादलों को हम एरोप्लेन डालेंगे, बादलों को धक्का मारकर बादलों को इधर लाएंगे, इधर से वर्षा कराएंगे। सूखा पड़ रहा है कोई बात नहीं, हम बड़ा सा बंद बनाएंगे, डैम बनाएंगे और नदी का जो मार्ग है उसको बदल कर यहां सबको पानी दिलाएंगे, नर्मदा सरोवर प्रोजेक्ट बड़ा बनाएंगे, फिर सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। और कोई बीमारी हो रही है, एड्स हो रहा है, कोई बात नहीं, जैसे चाहना है जियो, कोई बात नहीं, इंद्र तृप्ति करते रहो, भगवान भगवान के नियम कोई नहीं है, इंद्र तृप्ति करो, हम दवाइयां निकालेंगे, नई नई दवाइयां निकालेंगे। तो इस तरह से जब नास्तिकवाद और भोगवाद बहुत ज्यादा फैल जाता है समाज में, तो उस समय क्या होता है कि हम भगवान के आदेश के अनुसार कार्य नहीं करते, भगवान को प्रसन्न करने के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, और इसलिए भगवान जब अप्रसन्न हो जाते हैं, उनकी कृपा दृष्टि यहां पृथ्वी के निवासियों पर नहीं होती है, तो पृथ्वी माता कोई ना कोई कष्ट देती रहती है प्रजा को। और इसके बजाय कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें, उनके नाम का जाप करें, हम सोचते हैं कि इन कष्टों का प्रतिकार हम अपने बल से करेंगे, अपने बुद्धि से करेंगे। लेकिन ये वास्तव में कितनी मूर्खता की बात है। क्या हम कभी भी प्रकृति का सामना कर सकते हैं? क्या यह कभी संभव है? किसी के होश और ठिकाने हैं वो कभी ऐसे समझ सकता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, हम ब्रह्मांड में क्या है, एक कण भी नहीं है, ब्रह्मांड की बात दूर है, इस छोटे से छोटे छोटे से पृथ्वी लोक, एक लोक के ऊपर हम कितने छोटे हैं। एक तूफान आ गया तो सबसे बड़ा देश अमेरिका भी 4 दिन के लिए रुक गया, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़े उनके पास में एटम बॉम्ब है, न जाने क्या क्या यंत्र हैं, शस्त्र हैं, सब कुछ है, सबसे बड़ा विज्ञान, सबसे आर्थिक दृष्टि से बलशाली, हर दृष्टि से बलशाली देश, लेकिन एक तूफान आ गया, 4 दिन के लिए सारा देश रुक गया। अगर कल वहां कोई भूकंप आ जाए सबसे बड़े शहर में, क्या होगा? क्या अपने बल से उसको रोक पाएंगे? पृथ्वी माता अगर कुपित हो जाएंगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। पृथ्वी महाराज जैसे राजा आज कहां हैं, जो पृथ्वी माता के ऊपर कुपित होते हैं। हमारे अंदर ये शक्ति नहीं कि हम पृथ्वी माता के ऊपर कुपित हो जाएं। तो इस तरह से पृथ्वी माता के कोप को, उनके क्रोध को सहन करने की या प्रतिकार करने की शक्ति मनुष्य जाति में नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो पृथ्वी माता के कार्यों के प्रतिकार करने के बजाय पृथ्वी माता से कोऑपरेशन करना या सहभाग करके आगे चलने का प्रयास करेगा। माया देवी हमारे लिए बहुत हमारे लिए तो बहुत ही चतुर है। हम शेर हैं तो वो सवा शेर है, हम सोचते हैं कि हम प्रकृति के नियमों को के पीछे घूमकर हम कुछ कार्य करेंगे तो हम प्रकृति के नियमों को तोड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, माता प्रकृति पीछे छुपी हुई होती है, फटक करके पकड़ लेती है हमको। एक बार हमने देखा था जब हम रास्ते में जा रहे थे कि एक व्यक्ति ने देखा कि अभी लाल बत्ती है और टर्निंग में हमें लेफ्ट जाना है, कोई हवलदार नजर नहीं आता, तो फट करके उसने ले लिया गाड़ी। लेकिन हवलदार जानता था इस टर्निंग पे लोग ऐसा करते हैं, इसलिए वो झाड़ के पीछे छुपा हुआ था आगे चल के। और हमारे साथ में जो था उन्होंने बताया कि ये हवलदार हमेशा ऐसा करता है, हमेशा उस झाड़ के पीछे छुपा रहता है। आज जब लोग इधर उधर देखते हैं, कानून तोड़ने की प्रवृत्ति सब में हमारे अंदर है, इसलिए हम भौतिक संसार में आए हैं। तो फिर जब वो देखता है छुपके कि गाड़ी टर्न हो रही है, तो आके फिर सीटी मार लेता है, तो उसको पकड़ के जो भी उसका आगे का काम है कर लेता है। तो उसी तरह से माया देवी हमें धोखे में डालती है। हम सोचने लगते हैं कि अभी चलो हम मुक्त हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, नियम को तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर माया देवी की सीटी आती है। हम माया देवी की सीटी को कोई रोक नहीं सकता, नाना प्रकार के कष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम केवल प्रकृति के विरोध करने के बजाय अगर प्रकृति के संग में जाएं और भगवान की सेवा करें, प्रकृति का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रकृति मतलब भोग्य, जो जिसका भोग किया जाता है वो प्रकृति है, लेकिन भोग करने वाला कौन है? वो पुरुष है, परम पुरुष श्री कृष्ण। इसलिए कृष्ण को पुरुषोत्तम कहते हैं, परम पुरुष। और ये प्रकृति ये भोग्या है, जिसका भोग किया जाता है। तो हम भी प्रकृति है वास्तव में। जीव आत्मा जो है ये परा प्रकृति है, परा मतलब श्रेष्ठ प्रकार का प्रकृति, और ये जो जड़ प्रकृति है ये अपरा प्रकृति कहलाती है। दो प्रकार के प्रकृति होते हैं जिनका वर्णन भगवान श्री कृष्ण गीता में करते हैं। एक तो है ये पांच तत्वों वाला, पंच महाभूतों वाला प्रकृति, भूमिराप नलवयुखम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये प्रकृति आठ प्रकार के जड़ पदार्थों का बना हुआ, भूमि, जल, अग्नि, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहंकार। लेकिन इसके परे भी और एक प्रकृति है, ययेदं धारयतो जगत जीव भूतम महाबाहो। हे महाबाहो अर्जुन, इस प्रकृति के परे भी और एक प्रकृति है जो है जीवात्माएं, जिनकी वजह जो कि ये सारे ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं। तो इस तरह से जीव आत्मा भी प्रकृति है। प्रकृति अर्थात भोग्य, अर्थात जीव का स्थान ये है कि भगवान जीव का भोग करे, जीव भगवान की सेवा करे और भगवान जीव का भोग करे। क्योंकि भगवान एकमात्र पुरुष हैं, और चाहे जड़ प्रकृति हो या चेतन प्रकृति हो, दोनों प्रकृति हैं, और दोनों का अधिकार ये नहीं है कि वो भोग करें। भोग करने वाले केवल भगवान हैं। लेकिन जब जीव भूल जाता है कि वो प्रकृति है और पुरुष बनने का प्रयास करता है, और प्रकृति जड़ प्रकृति का भोग करने का प्रयास करता है, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। फिर प्रकृति माता कहती है, अरे मैं प्रकृति हूं वो ठीक है, लेकिन मेरे भोग करने वाले भगवान है, तुम नहीं हो। तो फिर प्रकृति अपना रूप दिखा देती है, हमें दंड देने के लिए प्रकृति तैयार हो जाती है। तो इस तरह से अगर हमें जीवन को सफल बनाना है, जीवन में खुश रहना है, सारे पृथ्वी के प्रजा को अच्छी तरह से पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलना है, सभी को सुखी से शांति से रहना है, तो हमें भगवान श्री कृष्ण को हमारे जीवन का केंद्र बनाना है और भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन यापन करके हम सब कुछ ठीक ठाक कर सकते हैं। सारे समाज में एक प्रकार का स्वर्ग या वैकुंठ बन सकता है। तो पृथु महाराज, माता पृथ्वी से कुपित हैं, क्योंकि हालांकि प्रजा ये सब कार्य कर रहे हैं, फिर भी पृथ्वी माता नहीं कर रही है उनका कार्य, इसलिए पृथ्वी महाराज अभी दंड देने के लिए तैयार है। और आगे चल के पृथ्वी माता उनसे क्या कहने वाली है वो आगे पढ़कर कल हम देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न टीका टिप्पणी?
सारे ब्रह्मांड के लोग या जगत के लोग प्रकृति के नियम के विरुद्ध चल रहे हैं, तभी प्रकृति बहुत कष्ट देती है प्रजाजनों को जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलती है। तब अगर अकेला जो ऐसा सोचता है कि मेरे को प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना चाहिए, तब भी कोई कष्ट नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति ऐसा अगर सोचकर कि प्रकृति के नियमों के अनुसार चलेगा तो वो सुखी रहेगा और बाकी जन सुखी रहेंगे?
वो तो सुखी रहेगा, लेकिन उसके तपस्या का फल दूसरों को भी मिलेगा। अभी इतना पाप बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है, बारिश आती है, सब कुछ कम से कम चल रहा है। क्यों? केवल उन लोगों की वजह से जो अभी धर्म परायण है, भले वो थोड़े क्यों ना हो, केवल उनकी वजह से, उनके तपस्या और उनके भगवत भावना के बल पर ये संसार अभी तक चल रहा है, नहीं तो कब का नष्ट हो जाना था। थोड़े बहुत लोग अभी कर रहे हैं ऐसे, इसलिए तो सब ठीक चल रहा है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका तो उस समय अर्जुन को कृष्ण भगवान रथ में लेकर गए और कहने लगे, चलो अब युद्ध समाप्त हो गया, अभी उतर जाओ। तो अर्जुन ने कहा, भगवान आप पहले उतरो। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं तुम पहले उतरो। तो अर्जुन ने सोचा ऐसा क्यों, तो अर्जुन उतर गए, बाद में कृष्ण उतरे। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण कमल रखे जमीन के ऊपर, क्या हो गया, रथ का चूर चूर हो गया। तो कृष्ण भगवान अर्जुन ने देखा, अर्जुन देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हो गया। तो कृष्ण भगवान ने कहा, वैसे तो ये चूर चूर कब का हो चुका था, लेकिन मैं खड़ा था, मैं बैठा हुआ था उस रथ के ऊपर, इसलिए बना रहा, इसलिए मैंने तुमसे पहले कहा कि तुम पहले उतर जाओ। अगर मैं पहले उतर जाता तो रथ के साथ साथ तुम, फिर तुम्हारा भी चूर चूर हो जाता। तो इसी तरह से थोड़े लोग हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं पृथ्वी में, इसलिए टिकी हुई है, अभी तक है, इसलिए सब कुछ कम से कम थोड़ा बहुत तो चल रहा है, नहीं तो कब का सब कुछ खत्म हो जाने वाला था। और कोई प्रश्न?
गौर पूर्णिमा के दिन एक प्रवचन में बताया था कि कलयुग में भी जो सुवर्ण युग आएगा 10,000 बरस के लिए, तो मेरा सवाल यह है कि उसके बाद में भक्ति नहीं होगी?
स्वर्ण युग के बाद में भक्ति होगी, लेकिन बहुत बहुत कम, थोड़े थोड़े लोग इधर उधर छुपे हुए करेंगे भक्ति, बाहर आके भक्ति नहीं कर पाएंगे, बहुत कम लोग करेंगे। वैसे भी बहुत कम लोगों की प्रवृत्ति होगी, उस समय घोर अंधकार होगा, कलयुग अपने पूरी शक्ति में आगे आएगा, तो उस समय केवल थोड़े ही लोग रहेंगे जो कि भगवान की सेवा में रुचि लेंगे और आपस में चर्चा करेंगे, भक्ति करेंगे, समाज में बाहर नहीं आ पाएंगे। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, इन लोगों की संख्या भी कम होती जाएगी। स्वर्ण युग के बाद में इन 10,000 सालों में अभी भक्तों की संख्या बढ़ने वाली है, लेकिन अभक्तों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन जो इस आंदोलन में शामिल होंगे उनका जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ठीक है, माइक।
कलयुग के एंड तक इस्कॉन के मंदिर और ये संस्था चलती रहेगी कि नहीं?
अभी हमें उस समय तक रहकर देखने की इच्छा नहीं है, हमें तो इस जन्म के बाद में ही चले जाना है वापस भगवान के धाम में। इच्छा तो कम से कम है, अभी जाएंगे नहीं जाएंगे वो दूसरी बात, लेकिन कलयुग के 10,000 साल तो कम से कम, ये स्वर्ण युग है, चैतन्य महाप्रभु का विशेष युग है, तो इसमें तो सब कुछ चलेगा, जोरदार चलेगा, धीरे धीरे से, भले इधर उधर कुछ हो जाए लेकिन फिर भी तेजी से आगे चलेगा। अब उसके बाद में क्या होगा वो तो चैतन्य महाप्रभु ही जानते हैं, श्री कृष्ण ही जानते हैं, लेकिन भक्ति के लिए कोई ना कोई पथ, कोई ना कोई मार्ग उपलब्ध अवश्य होगा, उन लोगों के लिए जो भक्ति करना चाहते हैं। दो प्रकार की परंपराएं होती हैं जो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को भगवद गीता के चौथे अध्याय में। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि यो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। कि हे अर्जुन, इस तरह से राज ऋषियों की परंपरा में ये ज्ञान चलते आ रहा है, लेकिन अब ये परंपरा टूट चुकी है, इसलिए मैं पुनः तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए। तो ये राज ऋषियों की परंपरा है जो बीच बीच में टूट जाती है। स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तों से मे सखा चेति रहस्यम एतद उत्तमम। और सकाले ने महता, बहुत लंबे समय से ये योग ये ज्ञान जो है नष्ट हो चुका था। स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन, इसलिए इस पुरातन योग पद्धति को मैं फिर से तुम्हें सिखला रहा हूं हे अर्जुन। क्यों? क्योंकि भक्तों से मैं सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, और इसलिए तुम इस रहस्य को समझने के लिए पात्र हो, योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो बीच बीच में यह देखा जाता है कि राज ऋषियों की परंपरा खंडित हो जाती है, टूट जाती है, लेकिन और एक परंपरा है जो कि चलती रहती है, और वो है संतों की परंपरा। जैसे वैष्णव संप्रदाय ब्रह्मा जी से चलते आ रहा है ना अभी से, ये हमारी तो एक परंपरा है, ऐसे कितनी ही परंपराएं हैं। ब्रह्मा जी से नारद, नारद जी से व्यासदेव, व्यासदेव से मध्वाचार्य, मध्वाचार्य से आगे चलते हुए और कितनी शाखाएं हैं, कितनी ही और अन्य परंपराएं हैं। तो साधुओं की परंपरा चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी? क्योंकि भगवान बड़े कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं। अगर एक भी व्यक्ति कोई हो जो कि भक्ति करना चाहता है, क्या भगवान उसके सहायता के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे? तो कलयुग के अंत तक भी संतों की परंपरा चलती रहेगी, भले वो कितने ही गुप्त क्यों न हो, गुप्त रीति से क्यों न चल रहा हो, लेकिन कुछ न कुछ भक्तों की व्यवस्था के लिए, उनकी सुविधा के लिए चलता रहेगा। लेकिन हमारी बात यही होनी चाहिए कि तब से पहले जितने ज्यादा लोग हो सके उनको साथ में लेकर वापस चले जाए, हम निकल पड़े इधर से, कलयुग के अंत तक रहने की इच्छा न रखें, क्योंकि हालत बहुत बुरी होने वाली है। संत होते हैं लेकिन ये संसार में रहते हुए भगवान की सेवा करते हैं। तो राजा होते हुए भी वो ऋषि हैं, लेकिन दूसरे संतों की परंपरा वो है जो जैसे वैराग्य के जीवन में होते हैं, जैसे व्यासदेव थे और मध्वाचार्य हैं, नारद जी हैं, इनकी परंपरा चलती रहेगी गुप्त रूप से, भले वो राजऋषि न हो, राजा न हो, लेकिन दूसरे संतों की परंपरा चलती रहेगी।
हम सब भक्त लोग रहते हैं, कभी कभी छोटे बड़े अपराध करते हैं तो उसे गुरु को भोगना पड़ता है, ऐसा है, इसलिए इसे हम बचना कैसे चाहिए?
नहीं करने से, बस
मतलब कैसे बस
नहीं करना,
समझ नहीं आता कि हम कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं,
तो समझने का प्रयास करना चाहिए। क्यों नहीं समझ सकते? जो अपराध करता है कभी समझ नहीं सकता कि मैं अपराध कर रहा हूँ? समझ सकता है हर एक आदमी, जो अपराध करता है समझ सकता है कि मैं अपराध कर रहा हूँ, हर एक व्यक्ति जानता है।
अपने आप को अगर दूसरे लोग बताते हैं तो फिर कम टू अंडरस्टैंड,
तो फिर अगर हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं और कोई हमें बताता है तो हमें नम्र होकर उसको स्वीकार करना चाहिए। फिर उल्टा उनको ये नहीं बोलना चाहिए, मैं नहीं अपराध कर रहा हूँ, तुम ही अपराध कर रहे हो, मेरे प्रति तुम अपराध करते हो, मुझे ऐसा सब बताकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त को चाहिए कि हमेशा नम्र रहे, और कोई भी भक्त की गलतियां बताए भी तो वो स्वीकार करें, ऐसा ना कहें कि वो मेरी गलती नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता हूं। भक्त का स्वभाव ये होता है कि वो नम्र रहता है, खास करके अपने गलतियों के बारे में वो जल्दी से स्वीकार कर लेता है, और जो गलतियां बताता है उसकी उसके बारे में घृणा या द्वेष भावना नहीं रखता कि आज इसने मेरी गलती देखी, कल मैं मौका देखूंगा, जब इसकी गलती मैं ढूंढ पाऊंगा तो उसको बराबर जाके सामने से बताऊंगा, ऐसे नहीं। भक्त देखता है कि ये भगवान का प्रतिनिधि है, मेरे सुधार के लिए, मेरे उद्धार के लिए भगवान ने इसके माध्यम से मेरे भलाई के लिए इसके मुख से बोला है, तो ये मेरा शुभचिंतक है, ऐसे सोचना चाहिए भक्त को, है ना? लेकिन संसार में उल्टी बात चलती है। लेकिन भक्त दूसरों की एक गलती ढूंढने के लिए इच्छुक नहीं होता। अपनी गलती कोई बताए तो भक्त स्वीकार कर लेता है, दूसरों को गलती की गलती ज्यादा नहीं देखता, दूसरों के अच्छे गुण देखता है, दूसरे लोगों में कितने अच्छे गुण है और उनकी प्रशंसा करता है। तो भक्त बनना कोई आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक दृष्टि से बहुत आसान भी है, अपराध नहीं करना कितनी आसान बात है, लेकिन फिर भी कठिन भी होता है, क्योंकि इतने सालों की जो आदतें पड़ी हुई हैं हमारे हृदय में उनको निकालना कठिन होता है। इसलिए सभी को चाहिए कि भक्तों के संग में आकर बहुत नम्रता से रहें और अपनी पुरानी आदतें प्रवृत्तियों को त्याग कर